ओम शांति। एक बार आप सभी मुस्कुराकर कहेंगे ओम शांति, थोड़ा सा प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। मुस्कुराहट आई नहीं है, इतने सारे यूथ बैठे हैं, कुछ एक आ जाएंगे। जोरदार आवाज से एक ही स्वर में कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान सरोवर के इस सुंदर प्रांगण में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित यूथ मेडिटेशन रिट्रीट में पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए आप सभी विशिष्ट युवा भाई बहनों का मैं आज युवा प्रभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि जो बहुत अधिक पीछे बैठ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, वो भी आगे आ जाए। आगे बैठने से हमारा ही फायदा निहित है। अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में उपलब्धियों से संपन्न विशिष्ट विभूतियां पधारने वाली हैं। आगे बैठने से क्या फायदा होता है? आगे बैठने से हमें जो महान विभूतियां हैं, तपस्वी विभूतियां हैं, उनकी दिव्य दृष्टि तो प्राप्त होती है, साथ साथ वर्षों से अर्जित उनका तपस्या का बल भी प्राप्त होता है, जो हमें गहन शांति और शक्ति प्रदान करता है। आज ज्ञान सरोवर का ये सुंदर प्रांगण युवा शक्ति के प्रकंपन से ओतप्रोत है। ज्ञान सरोवर का ये परिसर युवा शक्ति के आगमन से प्रफुल्लित हो गया है। तो एक बार आपके आगमन पर फिर से जोरदार तालियां, ताकि जो भी इधर उधर है आपकी तालियों की आवाज से आ जाए। युवाओं के विषय में अनेक प्रबुद्ध जनों ने अनेक बातें कही हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, आप सभी भी इन बातों को सुनते हुए आत्मनिरीक्षण अवश्य करेंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, युवा वो जिसके तन में जोश हो, मन में होश हो, बुद्धि में खोज हो, वही सशक्त युवा है। ओम शांति। एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति। हम सुन रहे थे युवाओं के विषय में अनेक प्रबुद्ध जनों ने अनेक बातें कही है। अभी हमने सुना जिसके तन में जोश है, मन में होश है और बुद्धि में खोज है, वही सशक्त युवा है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को बहुत ही सुंदर रीति से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, युवा वो जो प्रेरक इतिहास रचता है, युवा वो जो अनीति और दुर्गुणों से लड़ना जानता है, और युवा वो जो समस्याओं का समाधान निकालना जानता है। और इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने तो ये तक भी कह दिया कि मैंने अपने देश में 90 साल के नौजवान भी देखे हैं, तो 9 साल के बूढ़े भी। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी बूढ़ों की कैटेगरी में तो नहीं होंगे, नहीं है ना, नहीं है ना? तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। तो मैं पूर्व वर्णित सभी महानुभावों की कथनानुसार आज की उपलब्धियों से संपन्न युवा मंच को सहस्नेह मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वो आए और मंच पर अपना दिव्य स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम मैं सहस्नेह निमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी सुमन दीदी जी को, आए और मंच की शोभा को बढ़ाए। जब तक मंच पर आदरणीय दीदी आए, हम सब जोरदार तालियां बजाते ही रहेंगे। साथ ही साथ मैं सहस्नेह अनुरोध करती हूँ आदरणीय राजयोगी प्रहलाद भाई को, वो भी आए मंच पर अपना दिव्य स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से आपका भी हार्दिक अभिवादन है, अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो आए और मंच की शोभा को दिव्य तिलक और यूथ बुक के द्वारा सम्मानित करें। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहने, सुंदर मंच की दिव्य गरिमा को देखकर मन से यही भाव उद्भूतित हो रहे हैं। आप आए हमारे बीच में, तालियां बजती रहे। आप आए हमारे बीच में, ये हम सभी का श्रेष्ठ भाग्य है। आप आए हमारे बीच में, ये हम सभी का श्रेष्ठ भाग्य है। आपके पावन कदमों ने किया आज मंच को कृतज्ञ है। जोरदार तालियों से आज के इस स्वागत सत्र का शुभारंभ हम 3 मिनट परमात्म स्मृति से करेंगे। अभी बहुत ही सुंदर दिव्य गीत बजेगा, उसमें बहुत ही सुंदर संदेश निहित है। हम सभी उस गीत को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। 3 मिनट परमात्म स्मृति से।
जगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
स्वागत की अगली श्रृंखला को लेकर आ रहे हैं हमारे बीच में ब्रह्म कुमार युग रतन भाई। प्रभु ने आपको मधुर कंठ का वरदान दिया है, बाल्यकाल से ही आप ईश्वरीय ज्ञान में हैं और पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न है, और आपसे अनुरोध है आप आए अपने मन के भावों को, मन के उद्गारों को सुंदर गीत के माध्यम से प्रस्तुत करें। ब्रह्म कुमार युग रतन भाई, आप ऐसे दिव्य गायक हैं जिन्होंने प्रभु को अपना मीत बनाया और प्रभु की ही प्रीत का गीत गाया है। जोरदार तालियों से आपका अभिवादन है।
युवाओं में जोश होता है, साथ में होश की भी बहुत आवश्यकता होती है। क्रांति जरूर आती है युवाओं से, लेकिन शांति की आज विश्व को जरूरत है। आज आप सभी जो परमात्मा के घर में पधारे हैं, दिल से भगवान, इतने दूर दूर से आप आए हैं, आप सभी का, विशेष हमारे अतिथियों का भी दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, बारंबार अभिनंदन है।
खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
खातिर हमारे दूर से
युवाओं वाली तालियां चाहिए।
खुशियां बिखेर दी है यहां आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर,
अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर।
देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना,
उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना।
आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ बुलाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ बुलाए,
खातिर हमारे दूर से। मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा,
मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा,
शिरकत से जिनकी होता अव्वल है ताज सारा,
अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा,
शिरकत जो की है आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय युग रतन भाई का, सभी का स्वागत करने वाले युग रतन भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। मंच की शोभा और आज के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी खिलौरितनों का भी तहे दिल से बहुत स्वागत तो है ही, आप सभी को देखते हुए मन से यही भाव निकल रहे हैं, प्रभु के घर में आप पधारे, आपका ही परिवार है, प्रभु के घर में आप पधारे, आपका ही परिवार है। वरदानों की इस पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत बारंबार है, सभी का स्वागत बारंबार है। स्वागत की इस श्रृंखला को और सुशोभित करने के लिए अभी हमारे बीच में आ रही हैं अपने सुंदर शब्दों के द्वारा ब्रह्म कुमारी और इस सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर का शाब्दिक साक्षात्कार कराने के लिए आदरणीय राजयोगिनी सुमन दीदी जी, एक बार एक हाथ की ताली से हम आपका स्वागत करते हैं। मैं संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूंगी। जगत नियंता परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, सरल स्वभावी सेवा भावी, अपनी रूहानी और ओजस्वी वाणी से सबके हृदयों में प्रभु प्रेम के सुमन खिलाने वाली आदरणीय राजयोगिनी सुमन दीदी जी, आपका जन्म कर्नाटक के एक धार्मिक परिवार में हुआ। 1992 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। आपने बीए इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर डिग्री ली है, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स में, अनेकानेक ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने अपनी सेवाओं के द्वारा अनेकानेक आत्माओं को लाभान्वित और प्रेरित किया है। सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो के माध्यम से भी हम आपके प्रवचनों का लाभ ले सकते हैं। आप ब्रह्म कुमारीज की एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सीनियर राजयोगा टीचर होने के साथ साथ आपने न केवल देश में बल्कि विदेश में भी जाकर अनेकानेक आत्माओं का पथ प्रदर्शित किया है। आपकी जीवन यात्रा को निकट से देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, लगती सामान्य पर खास है आप, लगती सामान्य पर खास है आप, जीता जागता उल्लास है आप, कोई अंधेरा ना रोक सके जिसे, वही ज्ञान सूर्य परमात्मा का पवित्र प्रकाश है आप, पवित्र प्रकाश है आप। आदरणीय राजयोगिनी सुमन दीदी जी,
ओम शांति। मंचासीन प्रहलाद भाई, सारिका बहन और सभा में उपस्थित देश भर से आए हुए युवा फरिश्ते कहे क्या कहेंगे, क्योंकि युग रतन भाई ने अपने गीत में आप सभी को फरिश्ते कह करके संबोधित किया, तो ये हमेशा याद रखना कि हम सभी क्या है, फरिश्ते हैं। मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ ब्रह्म कुमारीज के बारे में संक्षिप्त परिचय देने के लिए। आप सभी यहाँ पहुंचे हैं तो निश्चित ही ब्रह्म कुमारी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा विस्तृत रूप से यहाँ बताने जा रही हूँ। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सन 1936 में स्थापित हुआ। अभी तक के 88 ईयर्स के अपनी जर्नी को तय करते हुए बहुत सारी सेवाएं ब्रह्म कुमारी के द्वारा होता रहा है। इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और ये एक बहुत ही यूनिक संस्था है जो आध्यात्मिक संस्था है, वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। और बेसिक यहाँ जो मूल बात यहाँ सिखाया जाता है आध्यात्मिकता, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में अंतर है। स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सल है, जब अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करते हैं और अपने अंदर सभी शक्तियों को अनुभव करते हैं, अपने यथार्थ स्वभाव को हम समझते हुए अपने कर्मों में उसको उपयोग में लाते जाते हैं, उसको आध्यात्मिकता कहते हैं। तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के पथ पर ब्रह्म कुमारी संस्था पिछले 88 ईयर्स से अग्रसर है, और साथ साथ ब्रह्म कुमारी के साथ साथ राज्यों का एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत 20 विंग्स हैं हमारे, जिसमें यूथ विंग भी एक है, एजुकेशन विंग है, मीडिया विंग है, और पॉलिटिशियंस विंग है, ऐसे 20 विंग्स संलग्न है सेवाओं में। लेकिन मूल बात ब्रह्म कुमारी के विजन क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम सभी आज के दिन में ये चाहते हैं विश्व में शांति हो, सुख हो, सद्भावना हो, लेकिन हमेशा हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं, ये परिवर्तन हो जाए तो हम परिवर्तन हो जाते हैं, इन पॉलिटिशियंस परिवर्तन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स परिवर्तन होना चाहिए, आजू बाजू वाले परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम कहते हैं स्व परिवर्तन से ही हम विश्व परिवर्तन ला सकते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, जब हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो जरूर हम दूसरों के लिए वो प्रेरणा मिलता है। ये सब कहाँ से शुरू हुआ, सिंध हैदराबाद से शुरू हुआ। दादा लेखराज उस जमाने के, उस समय के बहुत बड़े हीरे व्यापारी थे, हीरे जवाहरातों का, और उनके लगभग 60 साल के उम्र में बहुत सारे साक्षात्कार हुए। वैसे तो उनके जीवन बहुत ही सात्विक, बहुत ही धार्मिक विचार वाले थे, 12 गुरु उन्होंने की थी, रोज उठ करके वो विष्णु के भक्ति करते थे, लेकिन 60 साल के उम्र में उनको सब कुछ भरपूर होने के बाद भी, धन अथाह था, धार्मिक विचार वाले थे, सब कुछ प्राप्त होते हुए भी वो मन खाली था, कुछ ना कुछ वो ढूंढते थे, यथार्थ सत्य को वो ढूंढते थे। तो जब वो यथार्थ सत्य को ढूंढते थे तो उनको अनेक प्रकार के साक्षात्कार हुए। सबसे पहले जो साक्षात्कार हुआ उनको, इस कलयुगी दुनिया का महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। हम सभी मानते हैं ये कलयुगी समय चल रहा है। ये कलयुगी दुनिया का तीन प्रकार से उन्होंने देखा विनाश हो रहा है। एक तरफ एटम बॉम्ब्स स्फोटित हो रहे हैं, 1936 की बात मैं कह रही हूँ, जब एटम बॉम्ब्स भी इन्वेंट नहीं हुए थे, उनको लग रहा था कोई आग का गोला ऊपर से गिर रहा है आकाश से, और भूमि को स्पर्श करते ही वो स्फोटित हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, ऐसे महाविनाश उन्होंने देखा। और दूसरे प्रकार का उन्होंने देखा नेचुरल कैलामिटीज, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं फैमिन है, तो ये नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा विनाश को देखा। और तीसरे तरफ धर्मों के बीच लड़ाई, भाई भाई के बीच लड़ाई, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस उन्होंने देखा। तो सभी एक साथ विनाश होते हुए देख करके उनके अंदर ये आवाज आया, बस करो प्रभु, बस करो, ये मैं देख नहीं सकता हूं। तो उनके मन में ये प्रश्न हुआ उठा कि ये अगर संसार विनाश हो रहा है तो आगे क्या। तो कुछ दिनों के बाद पुनः दूसरा साक्षात्कार हुआ उनको, आने वाले सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार, जहां हर चीज परफेक्ट है, तन मन धन का सुख है, अथाह धन है, लेकिन सभी वहां के लोग मूल्यों से भरपूर हैं। इसीलिए वहां के जो मनुष्यों को या देवी देवता कहते हैं, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा परफेक्ट समय आने वाला है। ऐसा सुन करके लग रहा होगा ये तो कैसा हो सकता है, एक इमेजिनेशन हो सकता है, लेकिन लॉजिकली अगर देखें, समय साइक्लिक है, टाइम इज साइक्लिक, रात के बाद दिन को आना ही है, और सभी सीजन्स साइकिल में चलता है, और पानी भी साइकिल में चलता है, ऑपरेट होता है, फिर बारिश होती है, तो सब कुछ साइक्लिक है। ऐसे ही ये बड़ा साइकिल है, कालचक्र, जो कलयुगी दुनिया के बाद सतयुग को आना ही है, ये निश्चित है, लेकिन हम कितना तैयार है उस सतयुगी दुनिया में जाने के लिए हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है। तो फिर जब दोनों साक्षात्कार होने के बाद फिर उनको लगा कि ऐसा परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि एकदम तमोप्रधान दुनिया एकदम सतोप्रधान कैसे बन जाएगा। तो तीसरा जो उनको अनुभव हुआ, निराकार परमपिता परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार उनके तन में हुआ, और उनको ये अनुभव हुआ ऐसा समय आया है जो परमात्मा खुद आकर के, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, ऐसे हर युग के अंत में नहीं लेकिन कलयुग के अंत में, इस युग के अंत में जरूर परमात्मा का अवतरण होकर के इस युग का परिवर्तन जरूर होगा। ये महान कार्य की जिम्मेदारी उनको लगा कि परमात्मा उनको दे रहे हैं। इसी लक्ष्य से उन्होंने एक आध्यात्मिक संस्था स्थापित किया, और उन्होंने प्रवचन या ओम की ध्वनि उच्चारण करना शुरू किया, और उनकी बातों को सुन करके अनेक भाई बहने एकत्रित होने लगे हैं, और उनको अनेक प्रकार के भी साक्षात्कार होने लगे। और फिर करीब करीब 350 भाई बहने इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए, और उसको ओम मंडली का नाम दिया गया था। और उस समय बहने, माताएं, भाई और छोटे बच्चे बहुत सारे आए, और फिर धीरे धीरे उन्होंने साधना करना शुरू किया, तपस्या करना शुरू किया। सिंध हैदराबाद से पूरा ट्रांसफर होकर के फिर कराची में स्थानांतरित किया। वहां 14 साल 1950 तक उन्होंने तपस्या की, और बीच में स्वतंत्रता मिली भारत को, लेकिन 1950 तक वहां ही रहे, क्योंकि समय थोड़ा बहुत इतना नाजुक होने के कारण से फिर वहां ही रहना हुआ। 1950 में फिर सभी करीब 350 भाई बहने यहाँ माउंट अबू में आए, और तब से लेकर के अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स माउंट अबू में रहा है। और 1950 के बाद सभी अपनी बहने, दादियां कहते हैं बहनों, उस समय के बहनों को दादियां, फिर बाहर निकलने लगे और सेवा करने लगे। अभी 14 साल तो बाहर दुनिया क्या है, कलयुगी दुनिया क्या है, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि सबसे किनारा होकर के अंदर रह करके उन्होंने तपस्या की थी। फिर अभी धीरे धीरे बाहर निकल करके अलग अलग सेवा केंद्र, अलग अलग शहरों में सेवा केंद्र खोलने लगे, और 1950 to 1960s में करीब 200 राज्यों का सेंटर्स भारत में खुले, लखनऊ, दिल्ली, बैंगलोर, महाराष्ट्र में नागपुर, बॉम्बे, तो ऐसे अनेक अनेक सेंटर्स भारत में खुलने लगे। और फिर 18 जनवरी 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो दादा लेखराज जिनको कहते थे, उनको वो अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को यहाँ माउंट आबू में। फिर उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी और दीदी मनमोहिनी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में इस संस्था को चलाने के लिए जिम्मेदारी दी। और इस ब्रह्म कुमारी संस्था की एक नियम ये है कि नाम में ही देखा होगा, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि इस संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ हमेशा बहन रहेंगे। वैसे ब्रह्मा बाबा तो इस संस्था को चला रहे थे, लेकिन ऑफिशियली वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं थे। ब्रह्मा बाबा जब यहाँ थे तब मम्मा जगदम्बा सरस्वती को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में निमित्त बनाया गया था। और उस समय अपने चल और अचल संपत्ति सब कुछ ट्रस्ट में उन्होंने समर्पित किया था। फिर ऐसे ही मम्मा और बाबा चले जाने के बाद प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी ने बहुत अच्छी रीति से इस संस्था के कारोबार को चलाना शुरू किया। वैसे तो कहते हैं कि संस्था के चीफ या फिर जो चलाते हैं वो गुरु अगर शरीर छोड़ते हैं तो उनको लगता है कि ब्रह्म कुमारी फिर आगे चल करके वो क्या होगा पता नहीं, लेकिन और ही हमने देखा कि और विस्तार उसका बहुत ज्यादा बढ़ता रहा। 1969 के बाद विदेश में अपनी सेवाएं ज्यादा बढ़ने लगी और विदेश के भाई बहने भी यहाँ माउंट आबू विजिट करने लगे और करीब 1000 भाई बहने 1970 से लेकर 1980 तक 10 साल में 1000 भाई बहनों से भी अधिक डबल फॉरिनर्स यहाँ आने लगे। और फिर लंदन में विदेश के सभी सेंटर्स को चलाने के लिए उसको हेडक्वार्टर्स बनाया गया। 1972 में लंदन में सेवाएं शुरू की, ऑस्ट्रेलिया में 1975 में शुरू हुई और फिर अमेरिका में 1977 में। क्योंकि यह आध्यात्मिक संस्था है, कोई भी धर्म का बैरियर नहीं है, यहाँ हिंदूस भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वो अपने आत्मा को सशक्त बनाने की, अपने रूह को सशक्त बनाने की का एजुकेशन दिया जाता है। तो इसलिए हर धर्म हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर 1980 से लेकर 1990 तक एक ग्लोबल रिकॉग्निशन इस संस्था को मिलना शुरू हुआ। 1986 में यूएन में एक ग्लोबल कॉपरेशन एक प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया था, जिसके अंतर्गत ये मैसेज दिया गया था कि हर एक व्यक्ति अगर एक मिनट इस संसार को शांति दान करेंगे मेडिटेशन में बैठ करके, जरूर हम इस संसार में शांति स्थापन कर सकते हैं। तो वी हैड कलेक्टेड मिलियंस ऑफ मिनट्स। तो इसके कारण से यूएन के तरफ से हमें पीस मैसेंजर अवार्ड मिला। उस समय के जो हमारे चीफ थे दादी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को वहाँ इनवाइट करके उनको ये प्रदान किया था। वैसे ब्रह्म कुमारी संस्था हर लेवल में कार्य करती है। एक गांव में भी हम अपने सेंटर्स खोले हुए हैं, गांव गांव में भी हम जाकर के सेवा करते हैं, लेकिन टॉप लेवल में यूएन के साथ भी हम मिलकर के सेवाएं कर रहे हैं। वी आर अफिलिएटेड विद यूएन एज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ यूनिसेफ और यूकोसॉक के साथ भी हमारा कंसल्टेटिव स्टेटस है। वहाँ कोई भी कॉन्फ्रेंसेस होता है, कोई भी मीटिंग्स होते हैं, ब्रह्म कुमारीज के भी पार्टिसिपेशन वहाँ होता है, उनके भी ब्रह्म कुमारीज के भी राय वहाँ लिए जाते हैं। So we are working on all levels of the society. और उसके साथ साथ अलग अलग कंट्रीज में भी उस साल पीस मैसेंजर अवार्ड मिला इस कार्य के लिए. तब तक तो पांडव भवन था. आप बाद में एक दो दिन के बाद जब साइट सींग होगा तब आप सभी को जाने को मिलेगा, जहां ब्रह्मा बाबा मम्मा सभी दादियां वहां रहे और तपस्या की थी. और जैसे जैसे संस्था विस्तार होने लगा, बढ़ने लगा, स्थान की कमी होने लगी, तो फिर यहाँ ज्ञान सरोवर, उसके पहले ओम शांति भवन वहां स्थापित हुआ. 1984 में उसका निर्माण हुआ. बहुत बड़ा एक भवन वहां ऑडिटोरियम है जिसको यूनिवर्सल पीस हॉल भी कहते हैं, ओम शांति भवन कहते हैं. तब से लेकर के कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होने लगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस वहां ऑर्गेनाइज होने लगे. फिर उसके बाद और भी जगह कम होने लगा. तो 1992 में ये ज्ञान सरोवर का जो ये भूमि है उसको खरीदा गया. 92 से लेकर के 95 जनवरी तक उसको कुछ मेन भवन यहाँ निर्माण किया. और 18 जनवरी को इस कैंपस का इनॉग्रेशन किया. इसी हॉल में सभी उपस्थित रहे थे और इस हॉल का उद्घाटन किया. जो जब से ये ज्ञान सरोवर बना है, एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड भी कहते हैं, तो ये एक मॉडर्न नालंदा भी कहते हैं. क्योंकि यहाँ जैसे पांडव भवन है वो एक फीलिंग आता है, वहाँ परमात्मा का पिता का घर है. ये ज्ञान सरोवर में जब आते हैं एक यूनिवर्सिटी का फीलिंग आता है. क्योंकि यहाँ आधा साल जैसे अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक अलग अलग विंग्स के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं. तो जैसे आप यहाँ आए हैं, हर वीकेंड में यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं. आपसे पहले मीडिया कॉन्फ्रेंस था, उसके पहले कल्चरल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था, उसके पहले आईटी कॉन्फ्रेंस था. तो अलग अलग प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं, यहाँ विंग्स को इनवाइट करते हुए यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं अप्रैल टू अक्टूबर. फिर अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक यहाँ फॉरिनर्स आते हैं, जो ब्रह्म कुमारीज के राज्यों का अभ्यास वो लोग करते हैं. तो यहाँ आकर के उनके रिफ्रेशर रिट्रीट्स यहाँ करते हैं. अभी वर्तमान समय लगभग 110 कंट्रीज में हमारे राज्यों का सेंटर्स चल रहे हैं. और साथ साथ आप देखेंगे माउंट आबू विजिट जब करने जाएंगे तो वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल भी, हमारा ब्रह्म कुमारीज के द्वारा निर्मित वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल भी है, जहाँ दोनों प्रकार से ट्रीट किया जाता है. शरीर को भी ट्रीट किया जाता है और आत्मा को भी ट्रीट किया जाता है. वो बहुत सुंदर वातावरण वहाँ देखने को मिलेगा, लगता ही नहीं है कि वहाँ वो हॉस्पिटल है. तो जब ये ज्ञान सरोवर बना उसके बाद भी जब संस्था बढ़ने लगा, फिर माउंट आबू के नीचे जो शांतिवन है तो वो कैंपस फिर डेवलप करने लगे. तो वहाँ बहुत सुंदर एक बड़ा डायमंड हॉल है जिसमें 20,000 भाई बहने एक साथ बैठ करके प्रवचन सुन सकते हैं, योग तपस्या कर सकते हैं. और करीब 150 एकर्स में वो फैला हुआ है. वैसे तो शुरू हुआ था 20 एकर्स में, लेकिन फैलते फैलते अभी 150 एकर्स से भी बढ़ गया है शांतिवन का परिसर. और फिर 2000 से लेकर के एक बृहद कार्यक्रम होना शुरू हुआ. अलग अलग जो बड़े बड़े शहर है वहाँ 1,00,000 भाई बहनें एकत्रित होने लगे और बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने लगे थे. 2007 में प्रकाशमणि दादी जी ने अपना भौतिक शरीर त्याग किया. फिर उसके बाद आदरणीय जानकी दादी जी को इस संस्था के चीफ के रूप में निमित्त बनाया गया था. फिर उसके बाद 2008 के बाद अपने मीडिया की में जो सेवाएं हैं वो भी बहुत बृहद रूप से वो बढ़ने लगा था. Awakening with Brahma Kumaris, Awakening Channel, या Peace of Mind Channel, Asta Channel, ऐसे televisions, channels में, social medias में ऐसे सेवाएं बढ़ती रही और ये सुंदर अभी सेवाएं, जैसे कहा कि ब्रह्म कुमारी इसके साथ साथ विंग्स की भी सेवाएं होती रही है और ये बहुत सुंदर मैसेज संसार को ब्रह्म कुमारी इसके द्वारा मिल रहा है कि स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन जरूर हम ला सकते हैं और ये परिवर्तन करते हुए ये मैसेज भी हम दे रहे हैं, एक वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज कि विश्व एक फैमिली है, एक कुटुंब है, क्योंकि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और परमात्मा के संतान समझते हैं तो फिर सभी परमात्मा के संतान होने के नाते हम सभी एक परिवार के हैं। वैसे तो दुनिया में तो कहते हैं आपस में हम सभी भाई भाई हैं, लेकिन किस आधार से भाई है, जब तक अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम जागृत नहीं कर सकते हैं। तो इस रीति से संसार में सुख शांति और समृद्धि हमने को फैलाते हुए बहुत सुंदर कार्यक्रम हम समय प्रति समय ना केवल हेडक्वार्टर्स माउंट अबू में लेकिन अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग हमारे जोन्स और सब जोन सेंटर्स है, वहां भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहे हैं और आज आप सभी यहाँ पधारे हुए हैं, आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए यही मैं मैसेज देना चाहूंगी कि वेलकम टू द फैमिली। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमन दीदी का हम सभी को ब्रह्म कुमारीज का शाब्दिक साक्षात्कार कराने के लिए, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं, उसका मान सम्मान होते हैं, उसका गौरव होते हैं। तो अभी आप सब तैयार हैं, आप सभी ने क्या कहना है, हम युवा वही क्या कहना है, बोलो सभी, कोई जोश नहीं, कोई होश नहीं, बोलो हम युवा वही। चलो अभी कुछ सिचुएशंस दो तीन मैं देती हूँ, आपने बिल्कुल जोश से कहना है हम युवा वही। पतझड़ों से ना माने हार जो कभी, आवाज ही नहीं आई, फिर से, पतझड़ों से ना माने जो कभी हार, हर चुनौती करे हंस के स्वीकार, अभी भी आवाज नहीं आ रही, हर चुनौती करे हंस के स्वीकार, संसार परिवर्तन का जो है आधार, हर समस्या का करे समाधान, हर पल कुछ नया सीखने की है चाह। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने लिए जोरदार तालियां। युवा प्रभा की गतिविधियों से हमें अवगत कराने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं आदरणीय राजयोगी प्रहलाद भाई जी। अभी युवा प्रभा की गतिविधियों से हमें अवगत कराने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं आदरणीय राजयोगी प्रहलाद भाई जी। संक्षिप्त में आपका परिचय इस प्रकार है, आप लगभग 20 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में हैं, आप मूल रूप से ग्वालियर से हैं, आप राजयोगा प्रैक्टिशनर के साथ साथ प्रीचर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपकी सक्रिय भूमिका रही है, यूथ विंग के जो भी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनमें आप एज अ ट्रेनर अपनी बहुमूल्य सेवाएं देते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर आप अनेकानेक आत्माओं को लाभान्वित और प्रेरित करते हैं। बहुत सारी संस्थाओं ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं, उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहूंगी समय को देखते हुए। और अंत में आपकी सेवाओं को देखते हुए मैं यही कहूंगी, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया बल्कि विघ्नों में भी काम किया। आदरणीय राजयोगी प्रहलाद भाई जी।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव का आवाहन करते हुए मंचासीन आदरणीय सीमा दीदी, आदरणीय सारिका दीदी और सभा में उपस्थित सभी युवा प्रभाग के सम्मान्य कमेटी मेंबर और पूरे देश भर से आए हमारे इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सभी सम्मान्य भाई और बहनें और युवा साथी, सपनों की उड़ान को कभी थमने ना दो, मंजिल तुम्हारी है उसे पाने का जुनून कभी कम ना हो। ये युवाओं की पहचान रहती है हमेशा, उनों के अंदर इतना उमंग उत्साह जोश जुनून रहता है कि जिस भी लक्ष्य को पाना चाहें उस लक्ष्य के लिए अगर पूरी तरह से समर्पित हो जाएं तो उसे पाकर के ही छोड़ते हैं। जैसा कि अभी आदरणीय दीदी जी ने आपको ब्रह्मा कुमारी संस्थान का परिचय दिया और परिचय देते हुए आपने बताया कि किस तरह से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 20 प्रभाग के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, उसी में से एक प्रभाग, एक विंग यूथ विंग है, जिसके बारे में आज संक्षिप्त में मैं आपके साथ कुछ एक बातें शेयर करूंगा और संक्षिप्त में आपको उसकी रिपोर्ट भी बताना चाहूंगा। युवा प्रभाग जिसकी स्थापना 1985 में हुई और जितने भी हमारे यहाँ जो आपने देखे विंग बने हैं उन सभी विंगों में सबसे पहला विंग जो है वो युवा प्रभाग था। और ये जो वर्ष चल रहा है, युवा प्रभाग अपने 40वें वर्ष को पूरा कर रहा है और इसको देखते हुए युवा प्रभाग ने इन 40 वर्षों में जो देश विदेश के युवाओं को हजारों कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों युवाओं को जो सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा दी वो हम इस रिपोर्ट के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। और एक ऐसा विंग है ये, दुनिया में वैसे तो युवाओं के लिए बहुत सारे संगठन काम करते हैं लेकिन ये एक ऐसा युवाओं के लिए कार्य करने वाला संगठन है जिसने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं बल्कि लाखों युवाओं को निर्व्यसनी और दिव्य गुणों से सुसज्जित किया है और लाखों युवाओं को एक श्रेष्ठ जीवन जीने की दिशा प्रदान की है। एक ऐसा अनोखा युवा प्रभाग जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि हमने आपको बताया इसकी शुरुआत 1985 में हुई और निर्विकारी दृष्टिकोण, मजबूत नैतिक मूल्य, दैवीय शिष्टाचार और एक सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास को लेकर के युवा प्रभाग ने काम किया और हजारों लाखों युवाओं के जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा प्रदान की। युवा प्रभाग के द्वारा अनेकानेक, जैसे आप जो अभी देख रहे हैं यहाँ कॉन्फ्रेंस में, आप ऐसी कॉन्फ्रेंस तो आयोजित की ही गई लेकिन इसके अलावा अनेकानेक ऐसे कैंपेन और ऐसे अभियान शुरू किए गए जो पूरे देश में जिनकी गूंज उठी। आप देखेंगे 1985 में सबसे पहला जो एक कैंपेन स्टार्ट हुआ वो था भारत यूनिटी पदयात्रा, जिसने पूरे देश में हजारों युवाओं ने जाकर के पदयात्रा के माध्यम से युवाओं को आध्यात्मिकता का संदेश, बुराइयों को छोड़ने का संदेश और युवाओं को अपनी शक्ति को पहचान करके समृद्ध भारत, सशक्त भारत बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए इस पदयात्रा ने कार्य किया। इसके साथ ही आप देखेंगे 1989 में ऑल इंडिया मोरल अवेकनिंग कैंपेन स्टार्ट हुआ। हर वर्ष कोई ना कोई कैंपेन युवा प्रभाग के द्वारा पूरे देश में निकाला गया। आप देखेंगे 1993 में हार्मनी यूथ साइकिल यात्रा निकाली गई जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया और लोगों को व्यसन मुक्त बनने की प्रेरणा भी दी गई और पूरे देश में ये यात्रा निकाली गई थी। फिर आप देखेंगे इसी के साथ ही एक पॉजिटिव चेंज प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, क्योंकि आज हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में युवा मूझ जाते हैं या छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, तो युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको सही दिशा में कार्य करने के लिए सकारात्मक चिंतन उनके जीवन में आए और सकारात्मक पहल वो करें, उसके लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, पॉजिटिव चेंज प्रोजेक्ट, जो कि 1993 में प्रारंभ हुआ था और जो आज तक जो है ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। फिर आप देखेंगे यूथ डेवलपमेंट कैंपेन 1995 में स्टार्ट हुआ, इसके साथ ही यूथ कॉन्फ्रेंस 96 में युवाओं के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित करना प्रारंभ किया। फिर आप देखेंगे इसके साथ ही एक यूथ फेस्टिवल जिसकी शुरुआत 1997 में फर्स्ट यूथ फेस्टिवल फॉर वैल्यू बेस्ड सोसाइटी के लिए प्रारंभ हुआ और उसके बाद अनेक अनेक यूथ फेस्टिवल फिर पूरे देश भर में आयोजित किए गए। सेकेंड यूथ फेस्टिवल आप देखेंगे ये 1998 में प्रारंभ किया गया। थर्ड यूथ फेस्टिवल आपका 1999 में प्रारंभ हुआ। ऐसे लगातार आप देखेंगे प्रतिवर्ष इस तरह के राष्ट्रीय अभियान, यूथ फेस्टिवल और बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। इसके बाद ही आप देखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2001 में संस्थान के माध्यम से युवाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए इस कैंप के माध्यम से बहुत सारे भिन्न भिन्न राज्यों में बहुत सारे युवाओं को एक आध्यात्मिक दिशा उनको मिले, जीवन को एक सकारात्मक दिशा उनको मिले, उसके लिए इस कैंप ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देखेंगे 2001 में, फिर 2004 में, और इसके साथ ही फिर आप देखेंगे एक और प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई, रिबिल्डिंग यूथ टू रिबिल्ड द नेशन। ये 2000 से 2002 तक ये हमारा प्रोजेक्ट चला, और उसके बाद आप देखेंगे फिर स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, ये भी 2003 से 2005 तक पूरे भारत में संचालित रहा। इसका भी लाभ बहुत सारे युवाओं ने लिया और बहुत सारे युवाओं ने प्रेरणा लेकर के एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इस दिशा में कदम उठाया। इसके साथ ही आप देखेंगे फिर 2004 में यूथ फेस्टिवल और नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का शुभारंभ हुआ, स्वर्णिम प्रभात यूनिक सर्वे ऑफ यूथ ट्रांसफॉर्मेशन 2006 में एक ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। फिर 2006 में स्वर्णिम भारत युवा पदयात्रा निकाली गई, ये भी पूरे देश में निकाली गई। समय समय पर इस तरह के कैंपेन पदयात्रा संस्थान के द्वारा निकाले जाते रहे हैं, जिसकी आप झलकियां यहां पर देख रहे हैं। 2007 में एक और प्रोजेक्ट शुभारंभ किया गया जिसका नाम था यूथ एम्पावरमेंट सर्विसेज। ये 2007 में प्रारंभ हुआ, जो आज तक हमारा प्रोजेक्ट ये चल रहा है। साथ ही साथ छठवीं, सातवीं और आठवीं के विद्यार्थियों के लिए एक और प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया हमारे विंग के द्वारा, टच द लाइट। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और इस एज में ही अगर उनको एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो वो आने वाले समय में जो उनका जीवन है, आने वाला भविष्य उनका है, वो अपने भविष्य को भी अच्छा बनाएंगे और देश को भी एक अच्छी दिशा दे सकेंगे। टच द लाइट प्रोजेक्ट भारत के विभिन्न स्कूलों में, मैं कहूंगा कि हजारों स्कूलों में इस प्रोजेक्ट को चलाया गया, जिसमें कई लाख युवाओं ने जो है, कई लाख छात्रों ने इसका लाभ लिया। और आज भी हमारा ये प्रोजेक्ट युवाओं के लिए पूरा इसका सिलेबस बना हुआ है, टाइम टू टाइम जो है महीने में या महीने में चार दिन इस तरह से हमारे जो संस्था के भाई बहने हैं स्कूलों में जाते हैं और उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो सिलेबस बना है, उस अलग अलग वैल्यूज को लेकर के, अलग अलग दिव्य गुणों को लेकर के जो है उनको बताते हैं और उनको जीवन में कैसे धारण करना है वो भी इसके माध्यम से बताया जाता है। फिर आप देखेंगे 2008 में एम्पावर्ड यूथ फोरम की स्थापना हुई, उसके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में किए गए। 2009 में फिर एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप की शुरू कैंप किया गया और एक दौड़ भी इसमें एक शामिल रही, दौड़ के माध्यम से भी लोगों को मैसेज दिया गया। फिर आप देखेंगे 2009 में यूथ विंग के द्वारा ऑल इंडिया पीस पेंटिंग फेस्टिवल रखा गया, जिसमें कई हजार युवाओं ने जो है भाग लिया और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स के माध्यम से एक शांति का संदेश जो है इसके माध्यम से दिया गया। कुछ एक फोटोग्राफ्स आप यहां देख रहे हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। इसके साथ ही एक और बहुत सुंदर कार्यक्रम लेटर टू गॉड। वैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अभी तो खैर चिट्ठी का जमाना नहीं है, अभी तो आजकल फोन आ गया है, तो मैसेज के माध्यम से हम एक दूसरे को अपनी बात कह के कम्युनिकेट कर देते हैं तुरंत ही। पहले चिट्ठी का जब जमाना था तो लोग बड़ा उसका बेसब्री से इंतजार करते थे, और मुझे नहीं लगता कि अब शायद कोई चिट्ठी लिखता हो। आप में से कोई लिखता है कभी चिट्ठी ऐसे? अच्छा, एक दो लोग फिर भी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भी अपना एक अलग आनंद था। और यहां पर जो दिखाया जा रहा है, लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र, आप में से लिखा कभी किसी ने भगवान को पत्र? अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने लिखा, आप अपने लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात है कि भगवान को पत्र लिखना। अब भगवान को पत्र में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये तो सब आपकी अपनी भावनाएं हैं। तो एक लार्ज स्केल पर इसका आयोजन किया गया और पूरे देश भर में जो है इस तरह की एक्टिविटी आयोजित की गई, लेटर टू गॉड 2009 में ये प्रारंभ हुआ। फिर 2010 में संस्थान ने अपने 25 वर्ष पूर्ण किए, तो सिल्वर जुबली का आयोजन किया गया और सिल्वर जुबली पर भी राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आप इसमें देख रहे हैं हमारे संस्थान की जो चीफ हैं, आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, जो कि अपने 100 ईयर कंप्लीट कर चुकी हैं। और आपको खुशी की बात बताऊं कि हमारे आदरणीय दादी जी इस युवा प्रभाग की भी चेयरपर्सन है, इस युवा प्रभाग की भी अध्यक्षा है। 100 साल में भी वो इस यूथ विंग को, जब से यूथ विंग 1985 से बना है तब से लेकर के आज तक वो इस यूथ विंग की चेयरपर्सन है। इसमें आप देख रहे हैं हमारे संस्थान की जो यूथ विंग की वाइस चेयरपर्सन है आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, और पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी राजयोगिनी दादी जानकी जी इस चित्र में आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। फिर आप देखेंगे 2010-11 में लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप जो कि 7 जगहों अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। उसके बाद 2011-12 में फिर 40 अलग अलग जगहों पर लाइफ स्किल कैंप लगाए गए, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दोनों तरह के कैंप जो है यूथ विंग के द्वारा आयोजित किए गए युवाओं के लिए। फिर आप देखेंगे इग्नाइट द यूथ फॉर ग्लोरियस इंडिया, ये सर्विस प्रोजेक्ट 2011-12 में लॉन्च हुआ, जिसके माध्यम से भी बहुत सारे युवाओं को, युवाओं की सेवा हुई और उनको एक अच्छी दिशा और एक नई दिशा उनको मिली। इसके साथ ही आप देखेंगे एक नेशनल लेवल का सेमिनार भी 2012-13 में आयोजित किया गया। फिर आप देखेंगे कि नेशनल लेवल की मेडिटेशन रिट्रीट आयोजित की गई और जिसका विषय था फॉरवर्ड हैप्पीनेस, है ना, ये 2013 में, और नेशनल लेवल मेडिटेशन रिट्रीट जो है यूथ इन सर्च ऑफ सक्सेस ये 2014 में नेशनल लेवल के, इस तरह के 3 से 4 अलग अलग सन में जो है ये रिट्रीट यहां आयोजित की गई। इसके साथ ही आप देखेंगे वही नेशनल इंटीग्रेशन कैंप और लाइफ स्किल कैंप का भी आयोजन किया गया। एक और अहम प्रोजेक्ट जो हमारे यूथ विंग के द्वारा चला, जिसकी भूमिका अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 2017 में मेरा भारत स्वर्णिम भारत एग्जीबिशन बस सर्विस की लॉन्चिंग हुई और 2017 से लेकर के 2020 तक, यानी कोविड जब प्रारंभ हुआ उस समय तक 3 वर्षों तक ये बस पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में भ्रमण करते हुए 1 लाख से भी अधिक किलोमीटर का रन करते हुए कई सारे स्कूल कॉलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेट सेक्टर्स को कवर करते हुए लाखों युवाओं को इस कैंपेन के माध्यम से उनको व्यसन मुक्ति का संदेश और उनको एक आध्यात्मिक संदेश, सकारात्मक दिशा में चलने का संदेश और बहुत सारे जो है संदेश इस कैंपेन के माध्यम से पूरे देश भर में दिए गए। फिर 2018 में एक नेशनल लेवल का सेमिनार आयोजित हुआ, कल का शिल्पकार, है ना, यूथ जो है कल का शिल्पकार। फिर यूथ फेस्टिवल, ये लगातार हमारे, हमने जो आपको पहले बताया कि यूथ फेस्टिवल जो है हर वर्ष बीच बीच में होते रहे हैं, यहां भी माउंट आबू में भी और देश के विभिन्न स्थानों पर भी। 2021 में यूथ फॉर ग्लोबल पीस, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस समय कोविड का समय था, सब अपने घरों में बैठे थे और उस समय हमने देखा कि बहुत सारे यूथ मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, तो युवा प्रभाग ने प्लान करके एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया यूथ फॉर ग्लोबल पीस। इसमें आप देखेंगे जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस जनवरी में जो पड़ता है 12 तारीख को, 12 तारीख से प्रारंभ होकर के इंटरनेशनल यूथ डे तक ये जो है हमारा प्रोजेक्ट चला यूथ फॉर ग्लोबल पीस, और इसमें अलग अलग महीने में अलग अलग थीम पर कार्यक्रम किए गए पूरे देश भर में। जैसे जनवरी की जो थीम थी वो पीस, फरवरी की लव, ऐसे ही मार्च की कॉन्फिडेंस, अप्रैल की हेल्थ, मई की फैमिली, जून की फिर इस तरह से कई सारे, मतलब पूरा अगस्त तक जो है डिफरेंट डिफरेंट थीम पर कोविड के टाइम में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक नई ऊर्जा भरने के लिए इस प्रोजेक्ट ने काम किया, जिससे काफी युवाओं ने, लाखों युवाओं ने प्रेरणा ली और कोविड के समय में भी उनको बल मिला और वो एक नई दिशा में आगे बढ़ सके। फिर आप देखेंगे 2022 में और 2023 में स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहां पर एक आध्यात्मिक युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के युवा शामिल हुए और संसद की तर्ज पर युवाओं को विषय दिए गए, उन विषयों पर उनका डिस्कशन डिबेट हुआ और बाद में उसका जो निष्कर्ष निकला वो देखना चाहते थे कि युवा क्या करना चाहते हैं, युवाओं के अंदर किस तरह का चिंतन है देश के लिए, समाज के लिए, युवाओं की क्या भूमिका है। तो ये दो एक बहुत सफल एक्सपेरिमेंट रहे, आगे भी इस तरह के जो हमारे कार्यक्रम हैं वो अभी चलते रहेंगे स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट के, जिसका आप यहां पर देख रहे हैं कि 2022 और 2023 में। फिर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी पेंटिंग जो कि आप देखेंगे यूथ विंग के द्वारा 26 नवंबर 2010 को दुनिया की सबसे बड़ी शांति की पीस की पेंटिंग, रेत पेंटिंग का आयोजन किया गया, जिसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। फिर आप देखेंगे ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट हमारा एक स्टार्ट हुआ जो कि पॉज फॉर पीस, ये अफ्रीका की फोटोज आप देख रहे हैं इसमें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि छात्रों को तनाव और गुस्से से कैसे निपटना है, उसको कम कैसे करना है,
और सकारात्मक कैसे उन्हें बनाना है उसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो इसमें कई सारे देशों में भिन्न भिन्न कार्यक्रम जो है इसके द्वारा आयोजित किए गए। संस्थान को बहुत सारे अवार्ड और रिकॉग्निशन मिले हुए हैं, वो यहां पर आप देख सकेंगे। ऑल इंडिया एनजीओ स्टेटस बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी संस्थान को जो है सम्मानित किया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्वर्णिम भारत युवा पदयात्रा जो कि 2006 में निकाली गई थी, लॉन्गेस्ट वॉक के रूप में लिम्का बुक में इसको दर्ज किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये लेटर टू गॉड जो लिखा गया था उसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी संस्थान को दर्ज, वहां संस्थान को वहां पे दर्ज किया गया और उनको भी सम्मानित किया गया सर्टिफिकेट देकर के। फिर गुजरात गौरव अवार्ड जो कि हमारे संस्थान की यूथ विंग की वाइस चेयरपर्सन है आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, गुजरात गौरव अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी संस्थान के द्वारा लार्जेस्ट सैंड पेंटिंग जो अभी आपको बताई 2010 में बनाई गई थी उसके द्वारा गिनीज बुक में भी इसका नाम दर्ज किया गया यूथ विंग का। ये कुछ एक सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी फोटोग्राफ्स यहां आप देख पा रहे हैं अभी। ठीक, मैं चूंकि समय कम है एक मिनट में इसको पूरा समअप करता हूं। ये अभी हाल ही में युवा प्रभाग के द्वारा जो है माननीय राष्ट्रपति जी से पूरा एक 100 सदस्यीय दल ने मुलाकात की और युवा प्रभाग के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनकी सूचना उनकी जानकारी जो है उनको दी। फिर यूथ मिनिस्टर से भी युवा प्रभाग के सदस्यों ने मुलाकात की। यहां आप देखेंगे ये न्यूज लेटर संस्थान के द्वारा एक जारी किया जाता है जो हर महीने न्यूज बुलेटिन निकलती है। और 2023-24 में भी संस्थान ने 836 कार्यक्रम आयोजित करके 1,85,000 लोगों को इसके माध्यम से लाभान्वित हुआ। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें और भी हैं जो संस्थान के द्वारा जो कार्यक्रम हुए जो मैंने आपको अभी बताए। और आगामी 24-25 में भी संस्थान के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिसका लाभ पूरे देश भर के युवाओं को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद भाई का।